हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। धृति सर झटकते हुए वापस घर की ओर बढ़ गई। उसने जैसे ही घर में पहला कदम रखा, एक बार फिर वो बुरी तरह चौंक गई। उसके ठीक सामने चंद कदमों की दूरी पर अर्णव हाथ बांधे खड़ा था। उसकी गहरी काली आंखें धृति पर ठहरी थीं और लबों पर रहस्यमयी मुस्कान बिखरी हुई थी। अर्णव को सामने खड़ा देखकर तो जैसे धृति के होश ही उड़ गए। आप अंदर कब और कैसे आए? धृति ने फटी आंखों से उसे देखते हुए हैरत से सवाल किया। जवाब में अर्णव कुटिलता से मुस्कुराया। तब जब तुम डोरबेल बजाने वाले को बाहर तलाश रही थी। ये सुनते ही धृति के चेहरे के भाव एक लम्हे में बदल गए थे और अब तक जिस चेहरे पर हैरत थी, अब वहां गुस्सा और नागवारी झलकने लगी थी। और किससे पूछकर अंदर आए आप? आपको मेरे घर में मेरी परमिशन के बिना आने की इजाज़त किसने दी? किसी ने भी नहीं। मुझे तुमसे मिलना था, पर शायद मेरे डर से तुम आज घर से बाहर नहीं निकली तो मैं घर के अंदर चला आया। अर्णव ने बेफिक्री से कंधे उचकाते हुए लापरवाही भरे अंदाज में जवाब दिया। उसने ना सिर्फ धृति की चोरी पकड़ी थी, बल्कि उसे आईना भी दिखाया था, जो धृति से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसका पारा चढ़ गया और वो एकाएक अर्णव पर भड़क उठी। बकवास बंद कीजिए अपनी और अभी इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाइए। घर आए मेहमान से ऐसे बिहेव करती हो तुम? बेसिक मैनर्स भी नहीं तुम में कि जब कोई मेहमान घर आए तो उसे इज्जत से बिठाया जाता है, चाय पानी पूछा जाता है। अर्णव ने धृति पर तंस कसते हुए ज्ञान झाड़ा, जिससे धृति और ज्यादा खींच उठी। हाँ, नहीं है बेसिक मैनर्स मुझमें, और मुझे मैनर्स के लेक्चर देने से पहले जरा अपनी हरकतों पर गौर कीजिए, क्योंकि किसी लड़की के घर में धोखे से घुसना भी कोई अच्छे मैनर्स में नहीं आता, और जबरदस्ती घर में घुसे लोगों की मेहमान नवाजी नहीं दिखाई जाती, बल्कि उन्हें खदेड़कर घर से बाहर निकाला जाता है। करेक्शन प्लीज, मैं किसी अनजान लड़की के घर में चोरी से नहीं घुसा हूँ, बल्कि अपनी इकलौती बीवी के घर आया हूँ और शरीफों की तरह दरवाजे से दाखिल हुआ था। लेकिन धोखे से अंदर आए हैं आप, इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि जैसे आए हैं वैसे ही शांति से वापस चले जाएं। धृति ने झुंझलाते हुए उसे वार्निंग दी, पर अर्णव ने उसकी धमकी को हवा में उड़ा दिया और खुद सोफे को शाही राजगद्दी समझकर उस पर किसी रियासत के सम्राट जैसे तन कर बैठ गया। फिर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाते हुए गुरूर भरे अंदाज में जवाब दिया, सॉरी जानेमन, पर तुमसे बात करने आया हूँ और जब तक बात ना कर लूँ मैं यहाँ से हिलने भी नहीं वाला, और तुम्हारे नाजुक से वजूद में इतनी ताकत नहीं कि मेरी मर्जी के बिना मुझे यहाँ से बाहर निकाल सको। अर्णव सामने खड़ी धृति के वजूद पर उड़ती नज़र डालते हुए तिरछा मुस्कुराया। उसका ये अंदाज और जवाब सुनकर धृति सर से लेकर पैर तक सुलग उठी। वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही नन्हा कुश आकर उसके पैरों से लिपट गया और धृति के शब्द उसके गले में अटक कर रह गए। अर्णव को गुस्सा कुश को देखकर आना चाहिए था, पर जब्त कर गया और संजीदगी से बोला, देखो तुम्हारे गुस्से की वजह से बेचारा बच्चा कितना घबरा गया है, मेरा नहीं तो बच्चे का ही कुछ ख्याल कर लो। धृति, जो अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रही थी, अर्णव की बात सुनकर बुरी तरह खींच उठी। चाहते क्या हैं आप? क्यों आए हैं यहाँ? मेरा पता कहाँ से मिल गया आपको? मैं तो सब छोड़कर यहाँ आई थी ताकि सुकून से अपनी ज़िंदगी जी सकूँ, पर आपने यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? क्यों मेरे पीछे पड़े हैं आप? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? क्यों मुझे सुकून से शांति से मेरी ज़िंदगी नहीं जीने देते? मेरा सुकून छीन कर तुम सालों से यहाँ चैन की ज़िंदगी जी रही हो, इसे मेरा बड़प्पन और मेहरबानी समझो। गलती मेरी थी, इसलिए 3 सालों से खामोशी से उन गुनाहों की भुगत रहा हूँ, और यहाँ कोई तुमसे तुम्हारा सुकून या तुम्हारी जिंदगी की शांति छीनने नहीं आया हूँ। मैं बस अपने चंद सवालों के जवाब चाहता हूँ, उसके बाद चला जाऊंगा। अर्णव बेहद गंभीर था। धृति परेशान निगाहों से कुछ पल उसे देखती रही, फिर उसने अपने पैरों से लिपटे कुश को देखा और कुछ सोचते हुए घुटने जमीन पर टिकाते हुए उसके सामने बैठ गई। कुश बेटा, आप कमरे में जाइए, मम्मा कुछ देर में आपके पास आती है। कुश ने सहमी नगाहों से अर्णव को देखा, फिर इनकार में सर हिला दिया। धृति ने बड़ी मुश्किल से उसे समझाया, फिर बहला फुसलाकर अंदर कमरे में भेजने के बाद खुद अर्णव के सामने सीना तानकर और हाथ बांधकर खड़ी हो गई। पूछिए अपने सवाल और उसके बाद दफा हो जाइए मेरे घर से। अर्णव पल भर धृति को हैरत से देखता रहा। पहले से ज्यादा जिद्दी, गुस्सैल और संगदिल हो गई थी वो, जैसे अब उसे अर्णव से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो बस बार बार उसे खुद से दूर जाने को कह रही थी, मानो अर्णव के दूर जाने से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये ख्याल अर्णव के दिल को आहट कर गया, पर उसने अपनी भावनाओं को काबू में किया और गंभीर लहजे में सवाल किया। वो बच्चा कौन है? क्या रिश्ता है तुम्हारा उस बच्चे से जो तुम्हें मम्मा कहता है और अभी अभी तुमने उसे अंदर भेजा है? मैं इस सवाल का जवाब आपको क्यों दूं? ये मेरा पर्सनल मैटर है। धृति ने तिरकते हुए सवाल के बदले सवाल दागा, पर अर्नव ने भी उसी के लहजे में जवाब उसके सामने पेश कर दिया। और तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए ये मेरा भी मैटर है। इसलिए शांति से मुझे मेरे सवालों के जवाब दो, क्योंकि बिना जवाब लिए तो मैं यहाँ से हिलने भी नहीं वाला। अर्नव ने लगभग धमकी दी थी उसे, जिसे सुनकर धृति झुंझला उठी और गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, बेटा है मेरा, हो ही नहीं सकता। अर्नव ने तुरंत ही एतराज जताया। धृति भौहें से कोड़े उसे घूरने लगी, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो 2 साल का लग रहा है और हमें अलग हुए भी 3 साल ही हुए हैं। इस हिसाब से उसे 2 साल का होने के लिए जब तुम मुझे छोड़कर गई थी तब तुम्हारा प्रेग्नेंट होना जरूरी था, पर तब हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं था जिसके वजह से तुम प्रेग्नेंट हो जाओ, और मेरे अलावा किसी के साथ तुम्हारा उस तरह का रिश्ता हो नहीं सकता। अर्नव ने पूरे विश्वास और फैक्ट्स के साथ जवाब दिया, जिसे सुनकर धृति के जहन पर कुछ पुरानी बातें हावी होने लगीं। चेहरे के भाव जरा बिगड़े और उसने भौहें उचकाते हुए सवाल किया, क्यों नहीं हो सकता? आपने ही तो मुझे एक बाजारू लड़की की उपाधि दी थी, जिसके जाने कितने मर्दों से संबंध हो जो अपनी लालसा की तृप्ति के लिए किसी राह चलते के बिस्तर पर बिछने को भी तैयार हो जाए। धृति ने तीखे शब्दों के ऐसे बाण छोड़े जो सीधे अर्नब के सीने को छलनी कर गए। कभी ये शब्द उसी के लबों से अदा हुए थे, धृति के किरदार पर सवाल उसी ने उठाए थे। आज अपने गुनाहों का शिद्दत से एहसास हुआ उसे, और चेहरे पर शर्मिंदगी व पछतावे के भाव उभर आए। धृति के शब्द अर्नब से बर्दाश्त नहीं हुए और गुस्से में उसकी मुट्ठी कस गई। तुम्हारे बारे में इतनी घटिया बातें बोलना, तुम्हारे चरित्र पर शक करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, जिसके लिए मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। अर्नव ने सफाई देना चाही, पर धृति गुस्से और दर्द से चीख उठी, तो मैं क्या करूं? क्या होगा अब आपके शर्मिंदा होने से? मेरे चरित्र पर लगे दाग मिट जाएंगे या जो जख्म आपके उन शब्दों ने मेरे दिल पर दिए वो भर जाएंगे? नहीं होगा ऐसा, क्योंकि मुंह से निकले शब्द वो तीखे बाण हैं जो एक बार निकल गए तो सामने वाले की रूह को भेद देते हैं और उन्हें वापस लेने का कोई जरिया नहीं। अर्नव की नजरें शर्मिंदगी से जमीन पर गड़ गईं। धृति ने कुछ का ध्यान आते ही अपने गुस्से को काबू किया और सख्त अंदाज में आगे कहना शुरू किया, जवाब चाहिए था ना आपको कि जो बच्चा मुझे मम्मा कहता है वो कौन है मेरा और क्या रिश्ता है उसका मुझसे, तो कान खोलकर जवाब सुन लीजिए। वो आपका बेटा नहीं, मेरा बेटा है, और वो 2 साल का है, पर हमें अलग हुए 3 साल हो गए हैं, जिससे साफ जाहिर है कि उसका आपसे कोई रिश्ता नहीं है, उसका बाप कोई और है और अब मैं किसी और की हो चुकी हूँ। अच्छा, अगर वो तुम्हारा बेटा है तो बाप कौन है उसका? मृणाल से क्या रिश्ता है तुम्हारा?
अज्यूम कर लीजिए, इसमें तो आप माहिर हैं और इतने नादान या बेवकूफ भी नहीं कि मृणाल को मेरे साथ देखकर भी हमारे रिश्ते का अंदाजा न लगा सके। मुझे साफ साफ शब्दों में जवाब चाहिए धृति, क्या रिश्ता है तुम्हारा मृणाल से? अर्नव का जब्त जवाब देने लगा था और चेहरे पर गुस्सा उभर आया था।